नमस्कार भारत, आज 6 जून दिन मंगलवार, स्वीकार कीजिए संदीप सोनी का नमस्कार। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और यमन ने कतर से नाता तोड़ा। अरब के आसमान में फिलहाल नहीं उड़ सकेंगे कतर के विमान।
السعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وقالت وزارة الخارجية في بيان لها فجر اليوم
لندن حملے میں شامل دو لوگوں کے نام پولیس نے جاری کیے
جس میں سے ایک ویکتی ہے اس کا نام ہے خرم بٹ پاکستان میں ان کا جنم ہوا ہے دوسرا جو ویکتی ہے جس کا نام پولیس نے لیا ہے ان کا نام ہے رشید ردوان پولیس کے مطابق وہ شاید لیبیائی مورکو مول کے ہیں
साथ ही सुनिए ब्रिटेन का चुनाव और संभावित नतीजे भारत के लिए क्या मायने रखते हैं। होंगी और भी खबरें, समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। ब्रिटेन की पुलिस ने पुष्टि की है कि लंदन ब्रिज के हमलावर अतिवादी इस्लामी संगठन के जाने माने समर्थक थे और इनमें से एक पिछले साल एक प्रतिबंधित संगठन की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखा था। पुलिस ने दो हमलावरों के नाम भी जारी किए हैं। वहीं इस हमले के संबंध में गिरफ्तार किए गए सभी 12 लोगों को बिना कोई आरोप लगाए छोड़ दिया गया है। पिछले महीने हुए मैनचेस्टर बम धमाके के आत्मघाती हमलावर सलमान आब्दी के 23 वर्षीय भाई इस्माइल आब्दी को भी पुलिस ने बिना आरोप लगाए छोड़ दिया है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार के लंदन हमले के बहाने समाज में फूट पैदा करने नहीं देंगे। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान की दूसरी बार आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया था कि लंदनवासियों को डरने की ज़रूरत नहीं है कहकर सादिक एक दयनीय बहाना बना रहे हैं। इस पर सादिक को अमरीका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो की तरफ से समर्थन मिला है। उन्होंने कहा,
I don't understand why Donald Trump is trying to undermine a man who's trying to protect
the people. मुझे समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों उस शख्स पर प्रहार कर रहे हैं जो लंदन के लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। सादिक खान एक आदर्श मेयर हैं और हमारे सबसे करीबी मित्र देशों में से एक की राजधानी के मेयर हैं। ये थे न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो के शब्द। मिस्र और सऊदी अरब ने कतर के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कतर पर क्षेत्र में चरमपंथी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए सऊदी अरब समेत 6 अरब देशों ने उससे राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। उन्होंने अपने यहाँ रह रहे कतर के नागरिकों और पर्यटकों को 2 हफ्ते में अपने देश लौट जाने का आदेश दिया है। सऊदी अरब ने कतर से सटी अपनी ज़मीनी सरहद भी बंद कर दी है, जिससे कतर में खाने की चीज़ों की कमी होने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के थिंक टैंक चैथम हाउस की शोधार्थी चेन किनिमोंट कहती हैं,
Since coming to power, he's devised various plans for Qatar to have better long-term food security.
सत्ता में आने के बाद से कतर के अमीर ने खाद्य सुरक्षा के मकसद से योजनाएं बनाई हैं, तो अब शायद यह दिखे कि इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारना कितना मुश्किल है। यही होता है जब आप बुनियादी चीज़ों के लिए भी अपने पड़ोसी पर आश्रित हों। ये थे शोधार्थी जेन किनिमोंट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बताया जा रहा है कि सीरिया में अमरीकी अगुवाई वाले गठबंधन के एक हवाई हमले ने गलती से 20 से ज़्यादा आम लोगों की जान ले ली। ये लोग चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्ज़े वाले शहर रक्का से भाग रहे थे। सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली ब्रिटेन स्थित एक संस्था ने कहा है कि ये लोग यूफ्रेट्स नदी पार करने के लिए छोटी नावों पर सवार हो रहे थे, तभी वे हमले का शिकार हो गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अमरीका की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूरोपीय संघ उत्तरी अफ्रीका के साहेल इलाके में चरमपंथियों से लड़ने वाले एक साझा सैन्य बल को $5 करोड़ की मदद देने पर सहमत हो गया है। यह सैन्य बल माली, मोरिटेनिया, चैड, बुर्किना फासो और नाइजर के सैनिकों को मिलाकर बनाया जाएगा और इलाके में जिहादी चरमपंथियों, तस्करी नेटवर्क और अवैध प्रवासन से निपटेगा। माफ कीजिएगा। नाटो गठबंधन को अपना 29वां सदस्य मिल गया है। वॉशिंगटन में हुए एक समारोह में मॉन्टेनेग्रो ने आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल हुए। आप सुन रहे थे बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। अरब जगत के समीकरण बीते 24 घंटे में तेजी से बदले हैं और इन बदले समीकरणों ने अरब देशों के सुर एकदम बदल दिए हैं।
السعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقة الدبلوماسية مع قطر وقالت وزارة الخارجية
مصر کے ٹیلی ویژن پر ایک ادگھوشنا میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب سنیکت عرب امیرات بحرین اور یمن نے طے کیا ہے کہ قطر سے راجنائک سمبند ختم کر دیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قطر چرم پنتھ کا سمرتھن کرتا ہے۔ اسی کرم میں عرب کے آسمان میں اب قطر کے ویمان نہیں اڑ سکیں گے۔ مصر اور سعودی عرب نے قطر کے ویمانوں پر اپنے ہوائی کھیتر میں اڑنے پر پوری طرح سے پرتبندھ لگا دیا ہے۔ اس طرح قطر بڑے ناٹکی اور بڑے تیزی سے ہوئے اس گھٹنا کرم کے بیچ عرب دیشوں میں ایک دم الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔
قطع العلاقات دي واجب لانها مواله للارهاب، هي وتركيا وايران ودول والارهاب اللي احنا عايشين فيه ده۔
قطر سے سمبندھ توڑنے کا سمرتھن کرتے ہوئے مصر کی راجدھانی قاہرہ میں یہ ویکتی کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ قطر، ترکی اور ایران چرم پنتھ کا سمرتھن کرتے ہیں جسے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، سمبندھ ختم ہونے ہی چاہیے۔ ادھر دوسری اور قطر کی راجدھانی دوحا میں اس پورے گھٹنا کرم پر چنتا کے سور سنائی دے رہے ہیں۔
Sadly, I mean, today we got a phone call, for example, from a company, based out of Abu Dhabi, who had said that they no longer wanted to do business.
ایک کاروباری سنستھا سے جڑے خلیفہ الحارون کہہ رہے تھے انہیں ایک کمپنی کی اور سے فون آیا جس میں کہا گیا کہ وہ اب ہمارے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے۔ ایک نجی زندگی کا واقعہ بتاتے ہوئے ہارون نے کہا کہ انہوں نے اپنے جیون کے 17 سال بحرین میں بتائے ہیں جہاں ان کی ماں رہتی ہیں، لیکن وہ اب اپنی ماں سے ملنے نہیں جا پائیں گے۔ یعنی عرب جگت کے سمیکرن بیتے 24 گھنٹے میں تیزی سے بدلے ہیں اور ان بدلتے سمیکرنوں نے عرب دیشوں کے سر بھی بدل دیے ہیں۔ تو عرب کے آسمان میں فی الحال قطر کے ویمان نہیں اڑیں گے، عرب دیشوں نے قطر سے راجنائک سمبندھ توڑ دیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس کی وجہ۔ بی بی سی ہندی ڈاٹ کام کی ایک رپورٹ کے ساتھ ہریتا کانڈپال اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔
جی سندیپ، عرب دیشوں نے قطر سے راجنائک سمبندھ توڑ لیے ہیں۔ اس کی ویسے تو کئی وجہ بتائی جا رہی ہیں، لیکن جانکار اس کی 4 پرمکھ وجہ مانتے ہیں۔ پہلی وجہ جانکار جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مدھیہ پورو ایشیا میں کتھت عرب کرانتی کے دوران قطر پر مصر کے پورو اسلامک راشٹرپتی محمد مورسی کا سمرتھن کرنے کا آروپ لگتا رہا ہے، جبکہ سعودی عرب اور سنیکت عرب امیرات مسلم برادرہڈ جس سے کہ محمد مورسی جڑے ہوئے تھے اسے وہ آتنکی سنگٹھن کا درجہ دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ قطر نے کھیتر میں میڈیا پر اپنا ایکادھکار جمانے کی پرزور کوشش کی ہے۔ قطر کے پڑوسی کھاڑی دیشوں کے لیے یہ ایک چنتا کی بات ہے۔ مصر الجزیرہ کی ویب سائٹ پر چرم پنتھ بھڑکانے اور فرضی خبریں گڑنے کا آروپ بھی لگا چکا ہے۔ الجزیرہ کافی لوک پریہ ہے اور مصر میں جو ہے الجزیرہ کے پترکاروں پر کارروائی بھی کی جا چکی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، لیکن آلوچک جو ہے کہتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ الجزیرہ کو اپنی ودیش نیتی کے ایک اوزار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ قطر کے شیخ جو ہیں تمیم بن حمد الثانی کی کچھ وادت ٹپنیوں پر پچھلے کچھ دنوں وواد ہوا، اس میں کھاڑی کے باقی دیشوں کو جو ہے یہ ٹپنیاں ناگوار گزری ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق شیخ تمیم نے کہا تھا کہ ایران سے عربوں کی دشمنی کا کوئی کارن نہیں ہے، انہوں نے اسرائیل سے بھی اپنے اچھے رشتوں کی بات کہی تھی۔ حالانکہ قطر نے ان ٹپنیوں سے انکار کیا تھا۔ قطر کا کہنا تھا کہ سماچار ایجنسی کو ہیک کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ٹپڑیاں جو فرضی تھیں انہیں جو ہے پرسارت کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سعودی میڈیا میں اس طرح کی خبریں لگاتار چھپتی رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ لیبیا کے سنکٹ کے تار بھی کتھت طور پر قطر سے جڑتے رہے ہیں، قطر کا پر آروپ لگتے رہے ہیں کہ وہ لیبیا میں آتنکی سنگٹھنوں کا سمرتھن کرتا ہے۔ حالانکہ ان سبھی آروپوں کو قطر جو ہے وہ خارج کرتا رہا ہے. اور ویسے اپنے شروتاؤں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جبکہ قطر الگ تھلگ کیا گیا ہے. مارچ 2014 میں بھی سعودی عرب اور بحرین اور سنیکت عرب امیرات نے قطر پر ان کے آنترک معاملوں میں دخل دینے کا آروپ لگاتے ہوئے اپنے راجدوت قطر سے واپس بلا لیے تھے.
یہ تھیں ہریتا کانڈپال جو بتا رہی تھیں عرب دیشوں نے قطر سے سمبندھ آخر کیوں توڑے ہیں. عرب دیشوں میں اور خاص طور پر قطر میں بھارت کے کئی ناگرک جاتے ہیں, وہاں روزی روٹی کماتے ہیں, اور بات جب روزی روٹی کی ہو تو اس کے ساتھ کئی مانویے اور تمام دوسرے پہلو اپنے آپ جڑ جاتے ہیں. تو سوال یہ کہ قطر کے گھٹنا کرم کو بھارت کے سندربھ میں کس طرح دیکھا جائے, آئیے جانتے ہیں, سنتے ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپورو کرشن.
جی سندیپ, جیسا آپ نے کہا گلف, وہاں پر کافی بھارتی کام کرتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو دوحہ قطر یہ بھی ایک بہت بڑا سینٹر ہے جہاں پر بھارت سے لوگ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو دونوں دیش ہیں قطر اور بھارت, ان کے رشتے آپس میں ایک خاص طرح کے رہے ہیں. اور پردھان منتری نریندر مودی پچھلے سال ہی دوحہ گئے تھے اور انہیں قطر کے امیر شیخ تمیم نے آمنترت کیا تھا, اور قطر کے امیر انہیں بھی, وہ بھی 2015 میں بھارت آئے تھے. اور قطر میں بھارتیہ سمودائے کے لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں کہ ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا جنم قطر میں ہی ہوا ہے, مطلب دوسری پیڑھی جو ہے وہاں پر تیار ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ گلف میں ویسے لوگ یو اے ای سنیکت عرب امیرات میں رہتے ہیں, لیکن دوحہ میں بھی, قطر میں بھی اس سمے لگتا ہے کہ لگ بھگ 6.5 لاکھ بھارتیہ رہتے ہیں. اور یہ جو ابھی پابندی لگی ہے ان کا سیدھا اثر ان بھارتیوں پر بھی پڑے گا, اور وہ جو لوگ ہیں وہاں پہلے کی طرح سعودی عرب اور سنیکت عرب امیرات نہیں جا پائیں گے. حالانکہ بھارت سے سیدھے دوحہ جانے والی فلائٹس جو پرشین گلف روٹ سے نہیں جاتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, لوگ یعنی یہاں سے سیدھے دوحہ جا سکیں گے, وہاں سے واپس آ سکیں گے. اور آرتھک سمبندھوں کی بات کی جائے تو بھارت اور قطر کے بیچ لگ بھگ 16 ارب ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور دھیان دینے والی ہے کہ قطر میں کافی نیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں 2022 میں ورلڈ کپ فٹ بال ہونا ہے, تو کنسٹرکشن کا کافی کام ہو رہا ہے اور ان میں کافی بھارت کی کمپنیاں جڑی ہوئی ہیں اور وہ وہاں کے روڈ پروجیکٹس, ریل پروجیکٹس اور میٹرو پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں, تو وہاں کافی بھارتی انوالوڈ ہیں. لیکن ایک کوٹنیتک سمسیا ہے, کیونکہ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ بھارت کے سعودی عرب سے بھی بہتر رشتے رہے ہیں. سعودی عرب دنیا بھر میں کچے تیل کا سب سے بڑا نراتک ہے, یو اے ای وہ بھی کچے تیل کے سب سے بڑے نراتکوں میں شامل ہے, اور قطر وہ بھی ایل این جی یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس کا سب سے بڑا نراتک ہے. یعنی گلف میں الگ الگ دیش ان کے لیے الگ الگ طرح سے مہتوپورن ہے, تو اب بھارت کے لیے اب آسان نہیں ہوگا کہ وہ کس کا پکش لے کس کا نہ لے, اور تٹستھ رہے بھی تو کہاں تک تٹستھ رہے.
عرب جگت اور قطر کے بدلتے سمیکرنوں کے بیچ وہاں کام کرنے والے بھارتیوں سے جڑے مدے, ان مدوں کے بارے میں اور بھارت کی بھومیکا کے بارے میں بتا رہے تھے اپورو کرشن.
سنسنی نہیں, وشوسنیتا کا دم,
بی بی سی ہندی.
برٹین کی پولیس نے لندن میں بیتے شنیوار ہوئے چرمپنتھی حملے میں شامل دو لوگوں کے نام جاری کیے ہیں. یہ وہ دو لوگ ہیں جنہیں حملے کے دوران پولیس نے گولی مار دی تھی. اس خبر پر اور جانکاری کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے لندن فون کیا اور وہاں موجود بی بی سی سنواددتا وندنا سے بات کی.
جی سندیپ, تین حملہوروں کی بات کی تھی پولیس نے جب سے یہ حملہ ہوا ہے, اور اب پولیس نے ان میں سے دو کا نام بتایا ہے, جس میں سے ایک ویکتی ہے اس کا نام ہے خرم بٹ, جسے پاکستان میں ان کا جنم ہوا ہے, 27 سال کے, پوری لندن میں رہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک جو وشیش بات یہ ہے, جو شاید ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا صبح کے کارکرم میں, پولیس کو ان کے بارے میں کچھ حد تک جانکاری تھی, لیکن پولیس نے کہا ہے کہ انہیں یہ خفیہ جانکاری نہیں تھی کہ وہ کسی طرح کے حملے کی کوئی سازش کر رہے ہیں, اور کم سے کم تین لوگوں نے الگ الگ سمے پر ان کے بارے میں شکایت کی تھی کہ وہ شاید ایسی گتیویدھیوں میں شامل ہیں جو کٹر پنتھ سے جڑی ہوئی ہوں. یہاں کا ایک مشہور چینل ہے, وہاں کی ایک ڈاکیومینٹری بنی تھی کچھ سمے پہلے, جو لوگ کٹر پنتھی وچار دھارا کے ہیں ان کے بارے میں تھی. اس ڈاکیومینٹری میں یہ بھی دکھائے گئے تھے, جہاں پہ یہ ایک پارک میں ہے, اور جو اسلامک اسٹیٹ جھنڈا جو ان کا رہتا ہے اس کے جیسا دکھتا ہے ایک جھنڈا ہے, اور پولیس کے ساتھ بحثا بحثی کر رہے ہیں. یہ جو فوٹیج ہے, ویڈیو فوٹیج, یہ بھی ابھی سامنے آیا ہے. اور دوسرا جو ویکتی ہے جس کا نام پولیس نے لیا ہے, ان کا نام ہے رشید ردوان. پولیس کے مطابق وہ شاید لیبیائی مورکو مول کے ہیں. جب ان کا شو ملا تھا تو وہاں ریپبلک آف آئرلینڈ وہاں کا پہچان پتر ملا تھا, اور وہ وہاں کچھ سمے رہے ہیں. حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے بارے میں, وہاں کی پولیس کا, کہ ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی. تو یہ تو ان دو لوگوں کے نام ہے, تیسرے ویکتی کے بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے کہ تیسرا حملہ ور کون تھا.
وندنا, یہ بتائیے کہ आम चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है, आज 6 जून है, 2 दिन के बाद यानी 8 जून को चुनाव होने वाले हैं, तो लंदन हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बदला बदला नजर आ रहा है आपको वहाँ?
एक काम जो अभी पुलिस ने किया है, क्योंकि ये जो पिछले कम से कम 2 हमले हुए, वेस्ट मिनिस्टर के पास हमला हुआ था मार्च में और ये लंदन ब्रिज पे हुआ है, तो यहाँ पे करीब करीब 33 ब्रिज है, तो उनमें से कुछ प्रमुख ब्रिजों पर एक तरह की बैरियर नाकेबंदी की गई है, शायद इससे कि कोई ऐसी अपनी गाड़ी चढ़ा दे जिससे कि कोई हमला किया जा सके।
एक बात और बताइए कि लंदन हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से ब्रिटेन में, खासतौर पर लंदन में, आम लोगों के मन में किस तरह की बात है, कुछ आपको महसूस हुआ है सुरक्षा को लेकर, कुछ शंकाएं आशंकाएं लोगों के मन में?
ये जो सुरक्षा का मुद्दा था जो जब चुनाव अभियान शुरू हुआ था वो शामिल नहीं था, लेकिन सोमवार को जितनी भी बहसें हुई उसमें सुरक्षा का मुद्दा अलग अलग नेताओं ने जरूर उठाया कि क्या पुलिस बल और बढ़ाने की जरूरत है, क्या उन्हें और अधिकार देने की जरूरत है, तो राजनीतिक बहस में ये मुद्दा काफी हद तक छाया रहा। जाहिर सी बात है जब 3-4 महीने के भीतर इस तरह के 3 हमले हो जाएं तो लोगों के मन में एक आशंका होना लाजमी है, और वो दिखता भी है जब आप बहस होती है, सड़कों पे जाते हैं, लोग थोड़ा बहुत सहमे हुए जरूर हैं, लेकिन जिस तरह की ये राजधानी है तो लोगों का आना जाना और जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं।
ये थी लंदन से बीबीसी संवाददाता वंदना, और जैसा कि आपने सुना अभी चुनाव से पहले ब्रिटेन में सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन 8 जून के चुनाव के बाद क्या ब्रिटेन की तस्वीर कुछ बदल जाएगी, इस चुनाव के नतीजे का भारत पर क्या असर होगा, आइए भारत के संदर्भ में ब्रिटेन के चुनाव को समझते हैं प्रभात पांडे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्वाति ढींगरा के साथ।
स्वाति जी, ये बताइए कि भारत को ब्रिटेन के चुनाव पर क्यों नजर रखनी चाहिए?
जब टेरेसा मे ने सबसे पहले अपनी स्पीच दी थी कि हम ग्लोबल ब्रिटेन बनना चाहते हैं, सबसे पहला ट्रिप उन्होंने जो लिया था वो था इंडिया जाके, और इसलिए क्योंकि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। लेकिन इस वक्त जो आयात निर्यात ब्रिटेन और इंडिया के बीच में है वो सिर्फ करीब 5% से कम है, तो इसलिए अगर उससे ज़्यादा अगर उसे बढ़ाना है ब्रिटेन और इंडिया को आके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने पड़ेंगी, जैसे टैरिफ लेवल्स कम करने पड़ेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि है ऐसी चीज़ें जैसे यहाँ के लॉयर्स इंडिया जाके काम नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ें उन्हें बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, और इसीलिए इंडिया को ये नज़र रखनी चाहिए कि बाद में यूके के क्या विचार हैं, वो EU से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं और बिल्कुल कस्टम्स यूनियन से बाहर निकल गए तो वो अपनी ट्रेड पॉलिसी खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर वो कस्टम्स यूनियन के अंदर रहे तो वो अपनी ट्रेड पॉलिसी खुद नहीं बना सकते और फिर हम वापस उसी EU इंडिया ट्रेड नेगोशिएशन में पहुंच जाएंगे।
चुनाव नतीजों का भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों पर क्या असर होगा?
चुनाव के नतीजे पर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम देखें अगर कंजर्वेटिव्स जीत जाते हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हम कस्टम्स यूनियन में नहीं रहेंगे, इसका मतलब यूके और इंडिया जो ट्रेड नेगोशिएशंस होंगे वो EU से अलग होंगे। अगर लेबर पार्टी जीतती है या फिर लिबरल डेमोक्रेट्स आते हैं किसी तरह के कोएलिशन में तो फिर हम देख सकते हैं कि यूके EU में रहेगा कस्टम्स यूनियन में, इसका मतलब EU इंडिया नेगोशिएशंस को हमें देखना पड़ेगा, यूके इंडिया नेगोशिएशंस होंगी ही नहीं, तो इसलिए जो भी नतीजा होगा वही डिसाइड करेगा कि इंडिया पे क्या असर पड़ता है ट्रेड के हिसाब से।
चुनाव परिणामों का व्यापार समझौतों पर क्या असर होगा?
अगर वो EU से निकलते हैं तो EU से व्यापार कम होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि अगर जल्दी से भारत के साथ कोई डील हो जाए तो हो सकता है कि वो व्यापार बढ़ जाएगा और किसी तरह से जो नुकसान EU के साथ होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि UK इंडिया नेगोशिएशंस आसान नहीं है। पिछली बार जब EU इंडिया नेगोशिएशंस फेल हुई थी, जब वो फेल तो नहीं हुई थी लेकिन रुक गई थी, वो इसीलिए रुकी थी क्योंकि टेरेसा मे उस वक्त होम मिनिस्टर थी और वो चाहती थी कि इंडिया को माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं मिले, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है इस वक्त और कम से कम ये गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है कि वो इमिग्रेशन कंट्रोल्स लाएंगे और इसलिए वो नहीं चाहते कि इंडिया को कोई स्पेशल डील मिले इमिग्रेशन में।
ये बताइए कि क्या चुनाव नतीजों का अप्रवासन नीति पर भी कोई असर होगा?
अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी को देखें वो चाहते हैं कि इमिग्रेशन कंट्रोल्स EU के साथ हो और उन्होंने कहा है कि लगभग 1 लाख लोग हर साल आ सकते हैं, इस वक्त 2 लाख लोग आते हैं ईयू से, बाकी 2 लाख आते हैं आउटसाइड ऑफ यूरोप से, तो इसलिए 1 लाख लोगों तक कम करना काफ़ी बड़ी बात है। इसका मतलब जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि उनको कम जगह मिले। दूसरा मुद्दा जो है वो है, अगर हम लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स को देखें, कम से कम लेबर पार्टी ने कहा है कि वो चाहते हैं कुछ इमिग्रेशन कंट्रोल्स, लेकिन कोई बहुत एक्सप्लिसिट पॉलिसी नहीं दी है। अगर हम लिबरल डेमोक्रेट्स को देखें, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे, उससे हमारा व्यापार बढ़ता है, हमारी आमदनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए किस तरह क्या नतीजा आता है वो इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ब्रिटेन में होने वाले चुनाव और संभावित नतीजे भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, आप सुन रहे थे स्वाति ढींगरा से, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से संबद्ध हैं, और उनसे बात कर रहे थे प्रभात पांडे। और आइए अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। कुलदीप मिश्र स्टूडियो में मौजूद हैं, बताइए कुलदीप आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
जी सबसे पहले तो अंग्रेज़ी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जिस खबर को लीड बनाया है वो भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिए जवाब के सहारे लीड बनाया है। इसी खबर को और लोगों ने भी छापा है और अखबारों ने भी, लेकिन उन्होंने कश्मीर के हिसाब से छापा है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं जा सकता है, ये विदेश मंत्री का बयान था और उसको उन्होंने लीड बनाया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इस आधार पर छापा है कि ये ट्रंप को दिया गया जवाब है जिसमें वो कह रही हैं कि भारत ने पेरिस समझौते पर लालच या डर की वजह से नहीं पर्यावरण बचाने की प्रतिबद्धता के लिए दस्तखत किए थे।
मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात हो गई।
बिल्कुल, जो कि ट्रंप ने आरोप लगाया था कि कुछ चीन और भारत जैसे देशों का नाम लेते हुए कि इन लोगों ने पेरिस समझौते पर जो आर्थिक मदद मिलती है उसके लालच में समझौते पर दस्तखत किए थे।
इशारों में जवाब दे दिया है अमरीका को।
और एक खबर है जो इसरो का सबसे वजनी रॉकेट लॉन्च किया गया जिसके सहारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्थापित किया गया,
जिसे इसरो का बाहुबली बताया जा रहा है।
जी वो एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाहता था कि उसको लेकर के ज़्यादातर अखबारों ने तस्वीरों के साथ छापा है उसको, लेकिन नवभारत टाइम्स और अमर उजाला के शीर्षकों में गजब की समानता है। अमर उजाला ने लिखा है अंतरिक्ष में हमारा बाहुबली, और नवभारत टाइम्स ने लिखा है स्पेस में इसरो का बाहुबली।
लगभग 300 हाथियों के वजन के बराबर है ये।
है ये, हाँ 640 टन का बताया जा रहा है। तो ये देखिए फिल्में कैसे हमारे शीर्षकों को प्रभावित करती हैं। और पहले पन्ने पर एक और खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी है कि कश्मीर में गर्मियों में ही अधिकतर शादियां होती हैं, लेकिन इस बार शादियां अतिरिक्त जल्दबाजी में निपटाई जा रही हैं क्योंकि 8 जुलाई को चरमपंथी बुरहान वानी की मौत का 1 साल पूरा हो रहा है, तो इस वजह से माहौल को लेकर के बड़ी अनिश्चितताएँ हैं कि कैसा माहौल रहेगा कैसा नहीं, इसलिए शादियाँ जल्दी जल्दी निपटाई जा रही हैं, ये खबर है। एक खबर और हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है, वो ये कि कश्मीर में फिदाइन हमला करने आए 4 आतंकियों के ढेर होने की खबर। 2-3 अखबारों ने उसे उड़ी जैसा हमला नाकाम करके भी छापा है। दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है सो रहे जवानों को जिंदा जलाने की कोशिश। अरब देशों वाली कतर वाली खबर भी ज़्यादातर अखबारों पे है, उसको भारतीय एंगल से ज़्यादातर अखबारों ने छापा है। प्रणय रॉय के घर पर CBI छापे की खबर भी है।
बहुत शुक्रिया कुलदीप मिश्र, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां बता रहे थे। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़े जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी लखनऊ समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इस सिलसिले में दोषियों को पकड़ने के लिए आज 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। लखनऊ से समीरात मिश्र की रिपोर्ट।
मिर्ज़ापुर में राजीव गांधी की प्रतिमा खंडित किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा कुछ इसी अंदाज में लखनऊ से लेकर मिर्ज़ापुर तक दिखा। मिर्ज़ापुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। राज बब्बर भी बेहद गुस्से में थे।
एक बहुत ही निंदनीय घटना मिर्ज़ापुर के अंदर अवांछनीय तत्वों ने जो शर्मनाक हरकत की है, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि इस देश से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति की निंदा करता है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का खून खौल गया है। भारत रत्न राजीव गांधी जी की प्रतिमा को उन्होंने खंडित किया, उसका सिर काटकर नाले में फेंक दिया जो बाद में मिला, और वहां पर नीचे लिख दिया हमारी सरकार है, इसको पाकिस्तान भेज दिया गया है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि आज सुबह 10 बजे तक यदि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तो पार्टी राज्य भर में इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। राज बब्बर ने इस बारे में ज्ञापन देने के लिए आज राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा है। मिर्जापुर में दो दिन पहले कुछ लोगों ने राजीव गांधी की प्रतिमा तोड़ दी और सिर को धड़ से अलग कर कहीं फेंक दिया। यही नहीं, उस जगह पर कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिख दी गईं। जानकारों का कहना है कि इस घटना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए सड़क पर उतरने का एक मौका दे दिया है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि पार्टी इस मौके को भुनाने की स्थिति में ही नहीं है।
कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि अभी कांग्रेस के पास प्रदेश स्तर पे कोई बड़ा एक पावरफुल फेस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो कनेक्ट होना चाहिए, जो नेता का प्रदेश के नेता का अपने जिले के नेता होते, जिले के नेता अपने ब्लॉक और उसके गाँव के नेता, वो बिल्कुल कड़ियां टूट चुकी है। कांग्रेस के नेता ज्यादातर दिल्ली की राजनीति करते हैं, उसके कारण ये जो अगर माननीय मुद्दा मिला भी है और कांग्रेस भावनात्मक रूप से एक बार फिर से भरी भी आज जिस तरह उन्होंने आंदोलन वगैरह किया है, लेकिन इसको सस्टेन कर पाना, आगे ले जाना, इसमें बड़ी मुझे लगता है कांग्रेस में बड़ा चैलेंज है, जिसके कारण ही कांग्रेस लाख प्रयास करने के बावजूद रिवाइव नहीं हो पा रही या एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में खड़ी नहीं हो पा रही।
वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से महागठबंधन की तैयारियां हो रही हैं और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस और स्थानीय दलों के बीच बैठकें हो रही हैं, उससे ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिल सकता है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के इस अपमान को जिस तरह से आम जनता का अपमान बता रही है, उसे देखते हुए विपक्षी एकता का एक नमूना विरोध के इस महासमर में दिख सकता है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों उपनिषद और गीता पढ़ रहे हैं ताकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का सामना कर सकें। राहुल गांधी की इस तैयारी के बीच दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बहाने हमारे सहयोगी वात्सल राय ने कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि राहुल गांधी की ताजपोशी यानी उन्हें उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनाने की तैयारी कहाँ तक पहुँची?
राहुल जी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी में एक एक कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस के वर्कर सभी के सभी इस मत के हैं कि राहुल जी को अध्यक्ष बनना चाहिए और अल्टीमेटली इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मगर वो समय कब आएगा अध्यक्ष बनने का, वो फैसला सोनिया गांधी की और राहुल गांधी पर पार्टी ने छोड़ा हुआ है।
और राष्ट्रपति चुनाव जो अब बिल्कुल सामने है, क्या उस पर बात होगी आपकी कुछ?
देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के मामले में एक बात बहुत स्पष्ट हम लोगों ने कही है, पहले भी इस पर बात हुई है, कि एक परंपरा रही है इस देश में कि जो सरकारें रहती है, हमारे समय में भी हमने पहले विपक्ष को बुलाया, विपक्ष से बात की, विपक्ष को विश्वास में लेने का प्रयास किया, यही परंपरा रही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कंट्रोवर्सी में हम उनके चुनाव को नहीं डालना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एक दो बड़े नेताओं का बयान भी आया है कि बात करेंगे, मगर सरकार ने अभी तक विपक्ष से बात नहीं की है। सरकार विपक्ष से बात करेगी तो विपक्ष का जो मत होगा, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से हम अपना अन्य साथियों के साथ बात करके जो राय होगी वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी हम सरकार क्या करती है उसका इंतजार कर रहे हैं।
ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ इंदु पांडे। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय शटलर साई प्रणीत ने जोनाथन क्रिस्टी को हराकर 77 लाख रुपए इनामी राशि का थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। सिंगापुर ओपन जीतने के बाद प्रणीत का इस साल का ये दूसरा खिताब है। भारत की टॉप महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रविवार को क्रोएशिया के अपने जोड़ीदार इवान डोडिक के साथ साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल ग्रुप के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अब क्वार्टर फाइनल में सानिया की जोड़ी रोहन बोपन्ना की जोड़ी से भिड़ेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में तय समय में 4 ओवर कम करने को लेकर श्रीलंकाई टीम के कार्यवाहक कप्तान उपुल थरंगा को 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस वजह से थरंगा 8 जून को ओवल में भारत के खिलाफ और 12 जून को कार्डिफ में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। खेल समाचारों में बस इतना ही।
इसके साथ ही वक्त हो चला है मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। ब्रिटेन की पुलिस ने पुष्टि की है कि लंदन ब्रिज के हमलावर अतिवादी इस्लामी संगठन के जाने माने समर्थक थे और इनमें से एक पिछले साल एक प्रतिबंधित संगठन की डॉक्यूमेंट्री में भी दिखा था। मिस्र और सऊदी अरब ने कतर के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार के लंदन हमले के बहाने समाज में फूट पैदा नहीं करने देंगे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे कुलदीप मिश्र और इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। संदीप सोनी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।